एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मेरा मसीह
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं पिता। मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संग हो, उन्हें तेरा वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्रियो, आज मेरा संवाद का शीर्षक है अध्यात्मवाद के खिलाफ चेतावनी। यदि मरे हुए लोग पूरी तरह से संवेदनहीन हैं, तो अध्यात्मवादी माध्यम किससे या किसके साथ संवाद करते हैं, यह एक प्रश्न है। प्रत्येक ईमानदार मनुष्य यह अवश्य स्वीकार करेगा कि इसमें से कुछ घटनाएं कपटपूर्ण हैं, परंतु अन्यों को इस रूप में समझाया नहीं जा सकता। जाहिर है अध्यात्मवाद के साथ कोई ना कोई अलौकिक शक्ति जुड़ी है। इस मुद्दे पर बाइबल क्या शिक्षा देती है, आइए हम इसके विषय आज चर्चा करें और सीखें। पहला, हमें जानना है अध्यात्मवाद का आधार क्या है। अध्यात्मवाद की उत्पत्ति हवा से शैतान द्वारा कहे गए पहले झूठ से हुई, तुम अवश्य नहीं मरोगे, उत्पत्ति 3:4। उसके शब्द आत्मा की अमरता पर प्रथम उपदेश थे। आज संपूर्ण विश्व में सभी प्रकार के धर्म अनजाने में इस गलती को दोहराते हैं। कई लोगों के लिए यह दिव्य वाक्य कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, लिखा है एजेकियल 18:20 में, उलट दिया गया है और कहता है प्राणी भले ही पाप करे अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्राकृतिक अमरता के इस गलत सिद्धांत ने मृत्यु में चेतना में विश्वास को जन्म दिया है। जैसा कि हमने पहले देखा है, ये धाराएं इस विषय पर बाइबल की शिक्षा का सीधे तौर पर खंडन करती हैं। इन्हें मसीह धर्म में मूर्ति पूजक दर्शन से शामिल किया गया था, विशेष रूप से प्लेटो के महान धर्म त्याग के समय। यह मान्यताएं मसीह धर्म के भीतर प्रचलित दृष्टिकोण बन गए और आज भी प्रबल दृष्टिकोण बने हुए हैं। यह मान्यता कि मृतक चेतना अवस्था में है ने अनेक मसीहों को अध्यात्मवाद को स्वीकारने के लिए तैयार किया है। यदि मृतक जीवित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो वे सेवा करने वाली आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर क्यों नहीं लौट सकते, और यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो फिर उनकी सलाह एवं आदेश प्राप्त करने के लिए, ताकि दुर्भाग्य से बचा जा सके या दुख में सांत्वना प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास क्यों ना करें। तर्क के इस आधार को शैतान और उसके स्वर्गदूतों, जैसे कि हम पाते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:4-9 में, ने संपर्क का एक माध्यम स्थापित किया है जिसके द्वारा वे अपने छल को पूरा कर सकते हैं। अध्यात्मवादी बैठकें या सभाओं के माध्यम से वे दिवंगत प्रियजनों को प्रतिरूपित करते हैं, जीवित लोगों के लिए तथाकथित संतावना लाते हैं। कभी कभी वे भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं जो सटीक साबित होने पर उन्हें विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। फिर वे खतरनाक विधर्मियों की घोषणा करते हैं, वे प्राणिकता का ढिंढोरा पीटते हैं भले ही वे बाइबल और परमेश्वर की व्यवस्था का खंडन करते हों। बुराई के खिलाफ बाधाओं को दूर करने के बाद शैतान के पास लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने और निश्चित विनाश की ओर ले जाने के लिए स्वतंत्र लगाम है। इसलिए हम जानें कि अध्यात्मवाद के खिलाफ बाइबल चेतावनी देती है। अध्यात्मवाद के द्वारा किसी को धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से उसके दावों को झूठे प्रकट करती है। जैसा कि हमने देखा है, बाइबल हमें बताती है कि मृतक कुछ भी नहीं जानते, कि वे कब्र में अचेत पड़े हैं। हमने इसके विषय में पहले बातें की हैं। बाइबल मृतकों से या आत्माओं की दुनिया के साथ संवाद करने के किसी भी तरह के प्रयास को दृढ़ता से मना करती है। वह कहती है कि जो लोग मृतकों के साथ संवाद करने का दावा करते हैं, जैसा कि आज अध्यात्मवादी माध्यम करते हैं, वे वास्तव में परिचित आत्माओं से, जो शैतान की आत्माएं हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। प्रभु ने कहा ये गतिविधियां घृणित हैं, और यह कि जिन लोगों ने उसे बढ़ावा दिया उन्हें मौत की सजा दी जानी थी। यह हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, लेविवस्था 19 का 31 में, 20 का 27 में, और इसका हम तुलना व्यवस्था विवरण 18 का 10 और 11 से कर सकते हैं। यशया ने अध्यात्मवाद की मूर्खता को अच्छी तरह व्यक्त किया। वह कहता है, जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? बेस्ता और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोलें, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें कोई प्रकाश नहीं है। हम पढ़ते हैं यशया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय का 19 और 20 पद में। वास्तव में केवल बाइबल की शिक्षाएं ही इस भारी धोखे से मसीहों की रक्षा कर सकती हैं। आइए हम आगे देखते हैं अध्यात्मवाद की अभिव्यक्तियां। बाइबल अनेक अध्यात्मवादी गतिविधियों को दर्ज करती है। फिरौन के जादूगरों, निनवे एवं बाबुल के जादूगरों, ज्योतिषियों एवं तांत्रिकों से लेकर इज़राइल की चुड़ैलों और माध्यमों तक, और इन सब की निंदा करती है। एक उदाहरण साउल के लिए इंदौर की चुड़ैल का जादू है, जिसे हम पहले जिक्र किए हैं। इस विषय में पढ़ने और सीखने के वक्त शास्त्र कहता है, जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना उरीम के द्वारा, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। पढ़ते हैं पहला सामुएल 28 का 6 में। फिर इंदौर में जो कुछ हुआ उससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं था। साउल को एक दुष्ट आत्मा ने धोखा दिया था, जो मृत सामुएल का रूप धारण कर रहा था। उसने असली सामुएल को कभी नहीं देखा। चुड़ैल ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप देखा, जबकि साउल ने केवल समझा या निष्कर्ष निकाला कि यह सामुएल ही था। पद 14। यदि हम यह विश्वास करें कि वह प्रोतात्मा वास्तव में सामुएल था, तो हमें यह विश्वास करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि चुड़ैलें, जादूगर, मायावी, ओझा, जादू टोना करने वाले अध्यात्मवादी या माध्यम मृत्यु होने के बाद धर्मी मृतकों को वे जहां भी जाते हैं वहां से बुला सकते हैं। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि धर्मी सामुएल पृथ्वी में एक चेतन अवस्था में मौजूद था, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति भूमि में से निकलकर ऊपर आया था। देखिए पद 13 को, पहला सामुएल 28 अध्याय का। यह बैठक साउल के लिए निराशा लाई, आशा नहीं। अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली। पहला सामुएल 31 का 4 में हम इसे पाते हैं। यद्यपि तथा कथित सामुएल ने भविष्यवाणी की थी कि उस दिन साउल और उसके पुत्र उसके साथ होंगे, पहला सामुएल 28 का 19। यदि वह सही था, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि मृत्यु के पश्चात अवज्ञाकारी साउल व धर्मी सामुएल एक साथ रहते थे। इसके बजाय, भाई और बहनों, प्यारों, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि एक दुष्ट आत्मा ने बैठक में घटित भ्रामक घटनाओं को अंजाम दिया। इस बात को हमें जानना है, हमें समझना है। आगे हम चलिए देखते हैं अंतिम भ्रम। अंतिम भ्रम पूर्व में अध्यात्मवाद की अभिव्यक्तियां तंत्र मंत्र के क्षेत्र तक सीमित थी, परंतु हाल ही में अध्यात्मवाद ने मसीही रूप रंग को अपना लिया है, ताकि वह मसीह संसार को धोखा दे सके। मसीह एवं बाइबल को स्वीकार करने का दावा करते हुए अध्यात्मवाद विश्वासियों के लिए अत्यंत खतरनाक शत्रु बन गया है। इसके प्रभाव जटिल एवं भ्रामक हैं। अध्यात्मवाद के प्रभाव के माध्यम से बाइबल की व्याख्या इस तरह से की जाती है जो अनविकृत हृदय को प्रिय लगे, जबकि इसकी गंभीर और महत्वपूर्ण सच्चाइयों को बिना प्रभाव के बनाते हैं। प्रेम को परमेश्वर का मुख्य गुण माना जाता है, लेकिन यह एक कमजोर भावुकता के रूप में नीचे गिराया जाता है, जिससे अच्छे और बुरे के बीच थोड़ा ही अंतर होता है। परमेश्वर का न्याय पाप के प्रति उसकी निंदा, उसकी पवित्र व्यवस्था की आवश्यकताएं सभी को दृष्टि से दूर रखा जाता है। लोगों को 10 आज्ञाओं को एक मृत पत्र के रूप में मानने के लिए सिखाया जाता है। मनोरम मोहक किस्से कहानियां इंद्रियों को मोहित कर लेती हैं एवं मनुष्य को उनके विश्वास के आधार के रूप में बाइबल को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके माध्यम से सही व गलत सापेक्ष हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति या परिस्थिति या संस्कृति सत्य क्या है इसका आदर्श बन जाती है। संक्षेप में प्रत्येक व्यक्ति एक परमेश्वर बन जाता है जो शैतान के वादे को पूरा करता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जो हम पढ़ते हैं और पाते हैं उत्पत्ति 3:5 में। हमारे सामने परीक्षा का वह समय है जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हम इसे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:10 में। संसार को धोखा देने के अपने अंतिम प्रयासों में शैतान बड़े बड़े चिन्हों व चमत्कारों का उपयोग करने वाला है। इस कुशल भ्रम के विषय में कहते हुए यहूना भविष्यवक्ता कहता है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। प्रकाशित वाक्य 16:13-14, और इसे हम तुलना कर सकते हैं प्रकाशित वाक्य के ही 13:13-14 से। केवल वे ही जो परमेश्वर की शक्ति द्वारा संरक्षित किए जाते हैं अपने मन को पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों से दृढ़ करते हैं, इसे अपने एकमात्र अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं, बच सकेंगे। अन्य सभी के पास कोई सुरक्षा नहीं है और वे इस भ्रम में बह जाएंगे। पौलुस प्रेरित हमें और एक बढ़िया सलाह देता है कि हमें प्रेतवाद, शैतान की दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए अध्यात्मवाद की फुसलाहट से, उसके धोखा से बचने के लिए हमें परमेश्वर का औजार पहन लेना है, जो है कि हम धार्मिकता का झिलम पहन ले, हम सत्य का कमरबंद ले ले और हम उद्धार का टोप पहन ले और सुसमाचार फैलाने का जूती पहन ले, और इसके साथ साथ हमें विश्वास का ढाल ले लेना है ताकि हम शैतान के तीर से बचाए जा सकें। यीशु मसीह हमें कहता है कि यीशु मसीह को पहन ले। यीशु मसीह और उसका धार्मिकता को हम अपनाते हैं तो शैतान और उसके झूठ से हम बच सकते हैं और शैतान के छल से हम बच सकते हैं। बाइबल में यदि हम दृढ़ विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के बातों को जानेंगे, उसके सत्य को अच्छी तरह से जानेंगे और उसमें जब हम दृढ़ बन जाते हैं, उसमें चलते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के शक्ति से हम बचाए जाएंगे। आइए हम बाइबल में और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में भरोसा करें और यीशु मसीह को पहन ले और परमेश्वर के अवजार को ले ले कि हम शैतान से बचें। बाइबल के द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करके यीशु मसीह के लहू से हम शैतान और उसके झूठ और छल से हम बच सकते हैं और परमेश्वर के ताकत से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उपाय के लिए कि तू हमें शैतान के झूठ और छल से बचाने के लिए उपाय बनाया है कि हम यीशु मसीह और उसके धार्मिकता को पहन ले, हम बाइबल को पढ़े और उसमें दृढ़ विश्वास करें, तेरे बातों को हम अपने हृदय में रखें और उसके पीछे चले, तेरे ज्योति में चले, तेरे सच्चाई को माने कि हम शैतान और उसके झूठ और कपट से हम बच सके। पिता इसके लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे और तेरा पवित्र आत्मा का वरदान और सामर्थ्य दे मेरे हरेक श्रोताओं के संग। वो पिता उन्हें तो शैतान के छल से बचाए रख और तेरा पवित्र आत्मा वरदान दे कि हम तेरे ओर दृष्टि लगाए और तेरे राज के लिए तैयार हो, तेरे द्वारा बचाए जा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
जिसकी
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।